लूका बाब 19। यीशु यरूहू में दाखिल होकर शहर में से गुजर रहे थे। उसी शहर में जकाई नाम का एक आदमी था। वो मालदार था, तो दूसरी तरफ वो महसूल वसूल करने वालों का आला अहदेदार था। वो यीशु को देखने की तमन्ना करता था और यीशु को देखने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद थे। चूँकि जकाई बहुत पस्त कद था, इसलिए उसे लोगों की भीड़ से यीशु को देखना मुमकिन न हो सका। इस वजह से वो दूसरी जगह दौड़ा और एक गूलर के दरख्त पर चढ़ गया ताकि वो यीशु को देख सके। और जकाई को अच्छी तरह ये मालूम था कि यीशु इसी राह से गुजरेंगे। यीशु जब इसी जगह आए और दरख्त पर चढ़कर बैठे हुए जकाई पर उनकी नज़र पड़ी तो उन्होंने उससे कहा,
ऐ जकाई, जल्दी से नीचे उतर, आज मैं तेरे घर में मेहमान रहूँगा।
तब जकाई जल्दी से उतरकर नीचे आया और बड़ी खुशी से यीशु का इस्तकबाल किया। जब लोगों ने इस मंजर को देखा तो बड़बड़ाते हुए कहा,
यीशु कैसे आदमी के घर में जा रहे हैं? जकाई एक गुनहगार है।
जकाई ने खुदावंद से कहा,
मैं चाहता हूँ कि लोगों की मदद करूँ, मेरी रकम में से आधी गरीबों में बांट दूँ।
और कहा कि
अगर कोई कह दे कि मैंने किसी से धोखा किया है तो उस शख्स को उससे चार गुना ज्यादा वापस दूंगा।
यीशु ने कहा,
ये आदमी तो हकीकत में नेक है। सही तौर से इसका ताल्लुक इब्राहिम के सिलसिले नसब से है, इसलिए आज ही जकई गुनाहों से निजात पाएगा।
और कहा कि
इब्न आदम रास्ते से भटके हुए लोगों को ढूंढकर उनको निजात दिलाने के लिए आया है।
लोग जब इन बातों को सुन रहे थे तो यीशु ने एक तमसील कही, क्योंकि यीशु दौरा करते हुए यरूशलेम के करीब थे। बाज़ लोगों ने सोचा कि खुदा की बादशाहत बहुत जल्द आने वाली है। लोगों का ये ख्याल यीशु को मालूम हुआ, इस वजह से उसने ये कहानी बयान की।
एक बहुत बड़ा आदमी शाही इक्तदार हासिल करने के लिए दूर के मुल्क का सफर किया। उसका मंसूबा था कि वो शाही इक्तदार को हासिल करने के बाद वापस लौटकर मुल्क पर हुकूमत करे। इस वजह से वो अपने नौकरों में से 10 को एक साथ बुलाकर उनमें से हर एक को थैली भर रकम दी और कहा, मेरे वापस आने तक तुम इस रकम से तजारत करते रहो। लेकिन उस मुल्क के लोग उससे नफरत करते थे, इसलिए लोगों का एक गिरोह उसके पीछे लगा दिया। उस गिरोह के लोगों ने दूर के मुल्क में जाकर कहा कि हम नहीं चाहते कि वो हमारा बादशाह बने, लेकिन वो बादशाह बन गया। जब वो अपने मुल्क को वापस लौटा तो कहा कि वो मेरे नौकर जो मुझसे रकम लिए थे उन्हें बुलाओ, और कहा कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो उस रकम से कितनी कमाई की है। पहला नौकर आया और कहने लगा कि मेरे आका, मैंने तुम्हारी रकम से 10 गुना ज्यादा कमाया हूँ। बादशाह ने उस खादिम से कहा कि तू एक शरीफ नौकर है, इसलिए मैं समझ गया कि तुझ पर छोटे मामलात में भी भरोसा करना चाहिए, और कहा कि मेरे 10 गांव के हुक्मरानी के लिए मैं तुझे मुंतखब करता हूँ। दूसरा नौकर आया और कहने लगा, ए मेरे आका, मैंने तेरी रकम से 5 गुना ज्यादा कमाया है। बादशाह ने उस खादिम से कहा कि तू मेरे पास शहरों का हाकिम बन जा। तीसरा नौकर आया और बादशाह से कहने लगा, ए मेरी मालिक, तेरी रकम यहाँ मौजूद है, मैंने उसको कपड़े में लपेट कर रखा है। मैंने ऐसा इसलिए किया कि मैं तुमसे डरता था, क्योंकि तू सख्त आदमी है। जो तूने नहीं रखा उसे छीन लेता है, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। तब बादशाह ने उस नौकर से कहा, तू एक बड़ा नौकर है, खुद तेरी बातों ही से मैं तुझे फैसला लिख देता हूँ। तूने तो मुझे सख्त आदमी कह दिया है, और मुझे बगैर मेहनत के मुफ्त की रकम लेने वाला और बगैर खेती बाड़ी करके अनाज को इकट्ठा करने वाला कहा है। अगर वो बात हकीकत पर मबनी हो तो तुझे चाहिए था कि मेरी रकम को मालदार के यहाँ रखता, ताकि जब मैं लौट कर आता तो मैं उसको सूद के साथ हासिल कर सकता था। तब बादशाह ने वहाँ पर मौजूद लोगों से कहा, इस नौकर से रकम लेकर उस आदमी को दे दो कि जिसने 10 गुना ज्यादा कमाया है। उन लोगों ने बादशाह से कहा कि ऐ हमारे मालिक, इस नौकर के पास इस वक्त 10 गुना ज्यादा रुपए हैं, बादशाह ने कहा, मैं तुमसे ये कहता हूँ, जिसके पास है वो खर्च करे तो उसको मजीद दिया जाए, और जिसके पास तो है मगर वो खर्च न करे तो उससे वो भी ले लिया जाए। मेरे दुश्मन कहाँ हैं जो नहीं चाहते थे कि मैं उनका बादशाह बनूं? मेरे तमाम दुश्मनों को यहाँ लाओ और उनको मेरे नजरों के सामने कत्ल करो।
ये सारी बातें कहने के बाद यीशु ने लगातार यरूशलेम की तरफ अपने सफर को जारी रखा। यीशु जब बैतफगे और बैत अनियाह के करीब पहुंचे, जबकि वो मकामात जैतून के पहाड़ के करीब थे, यीशु ने शागिर्दों को बुलाया और उनसे कहा,
उस गांव को जाओ जिसे तुम देख सको। जब तुम उस गांव में दाखिल हो गए तो तुम वहां एक जवान गधे को बधा हुआ पाओगे, और अब तक किसी ने उस गधे पर सवारी नहीं की है। उस गधे को खोल दो और यहां लाओ। अगर तुमसे कोई पूछे कि उस गधे को क्यों ले जा रहे हो, तो तुम उससे कहना कि खुदावंद को इस गधे की जरूरत है।
वो दोनों शागिर्द गांव में दाखिल हुए जैसा कि यीशु ने कहा था। इसी तरह उन्होंने उस गधे को देखा। जब उसको खोला तो गधे के मालिकों ने बाहर आकर शागिर्दों से पूछा,
इस गधे को क्यों खोलते हो?
शागिर्दों ने जवाब दिया,
खुदावंद को उसकी जरूरत है।
इस तरह शागिर्दों ने उस गधे को यीशु के पास लाए, और शागिर्दों ने अपने कपड़े गधे की पीठ पर डाल दिया और यीशु को गधे पर बिठा दिया। यीशु गधे पर सवार होकर यरूशलेम की तरफ सफर पर निकले। रास्ते में शागिर्दों ने अपने कपड़े यीशु के सामने फैला दिए। यीशु जब यरूशलेम के करीब आए और जैतून के पहाड़ के करीब पहुंचा, तो उसके शागिर्दों का पूरा हलका खुश हुआ, और जिन निशानियों और मौजजात को देखा था उससे खुश होकर वो बुलंद आवाज़ में खुदा की तारीफ करने लगे। वो पुकार रहे थे,
खुदावंद के नाम पर आने वाले बादशाह के लिए खुश आमदीद। आसमान में अमन व अमान हो और खुदा के लिए जलाल व अजमत हो।
मजमे में से चंद फरीसियों ने कहा,
ऐ उस्ताद, अपने शागिर्दों को ताकीद कर दे कि इस तरह ना कहें।
तब यीशु ने जवाब दिया,
उनको ऐसा कहना ही चाहिए कि अगर वो ऐसा न कहें तो ये पत्थर उनकी जगह पुकारेंगे।
जब यीशु यरूशलेम के करीब आए और उस शहर को देखे, तो उसके लिए वो रोए। उसने यरूशलेम से कहा,
ये अच्छा होता कि अगर आज तो इस बात को समझता कि तुझे किससे सलामती है, लेकिन तू इसको समझ नहीं सकता, क्योंकि वो तेरी नजर से छुपा हुआ है। एक वक्त तुम पर आएगा जब मेरे दुश्मन तेरे अतराफ मुहासरा की तरह हल्का बनाकर चारों तरफ से तुझे घेर लेंगे। वो तुझे और तेरे सब लोगों को तबाह करेंगे। इस तरह करेंगे कि तेरी इमारतों के पत्थरों पर कोई पत्थर न रहे। ये सब चीजें तुम्हारे साथ पेश आएंगी, क्योंकि तुमने उस वक्त को नहीं समझा जब खुदा तुम्हें बचाने आया था।
यीशु हैकल में गए और वहाँ पर उन लोगों का पीछा करना शुरू किया जो चीज़ें फरोख्त कर रहे थे। उसने उनसे कहा,
मेरा घर दुआ का घर है, इस तरह सहीफों में लिखा हुआ है, लेकिन तुमने उसको डाकुओं के गार में तब्दील कर दिया है।
यीशु हैकल में रोज़ाना लोगों को तालीम देते थे। काहिनों के रहनुमा और मुअल्लिमीन शरीयत और लोगों के कायदीन में से बाज यीशु को कत्ल करना चाहते थे, लेकिन तमाम लोग यीशु की बातों को तवज्जे से सुनते थे, और यीशु जिन बातों को कहा था उनमें वो दिलचस्पी ले रहे थे, जिसकी वजह से काहिनों के रहनुमा और मुअल्लिमीन शरीयत और लोगों के कायदीन नहीं जान पाए कि वो यीशु को किस तरह कत्ल करें।